SBS हिंदी।
एक नई जानकारी सामने आई है जिसके अनुसार एशिया से आए कुछ माइग्रेंट्स और उनके बच्चों में अस्थमा के गंभीर लक्षण देखने की संभावना ऑस्ट्रेलिया में थंडर स्टॉर्म्स के दौरान ज्यादा होती है। विक्टोरिया सरकार की एक रिपोर्ट में इस पर विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि हाई रिस्क वाले ग्रुप्स को इस दौरान ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। एना किम एंडरसन को कभी अस्थमा की शिकायत नहीं रही, लेकिन 8 साल पहले मेलबर्न की एक तूफानी रात में सब बदल गया।
I was having difficulty breathing, I felt a bit wheezy, had a tight chest. And because I'd never had asthma before, I didn't understand what it was.
सुश्री एंडरसन को उस रात थंडर स्ट्रॉम एस्थमा का अटैक हुआ था। थंडर स्ट्रॉम एस्थमा एक बेहद सीवियर प्रकार का एस्थमा होता है जो मौसम के अजीबो गरीब संयोग के कारण शुरू होता है और इसमें जान को बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। 2010 में पहली बार थंडर स्ट्रॉम एस्थमा से पीड़ित होने के बाद 2016 में सुश्री एंडरसन फिर इसकी चपेट में आई। वे बताती हैं कि जब वे हॉस्पिटल पहुंची तो उन्हें पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे पीड़ित हैं।
I was very low on oxygen. They took me straight into ICU. It was a whole room full of Asians and Indians who had suffered the same attack as me.
विक्टोरिया सरकार की हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सुश्री एंडरसन पूर्वी या दक्षिण एशियाई मूल के हजारों लोगों में से हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने के बाद नई एलर्जीज हो जाती हैं या वे अस्थमा से पीड़ित होते हैं। मोनाश यूनिवर्सिटी के ईस्टर्न हेल्थ क्लिनिकल स्कूल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डायरेक्टर प्रोफेसर फ्रैंक तियन इस नई रिपोर्ट को तैयार करने वालों में से एक हैं। वे बताते हैं कि एस्थमा से पीड़ित होने वालों में एशियाई मूल का होना एक बड़ा कारक है।
People of Asian origin and Indian origin coming to Australia, migrating to Australia, do have increased risk of allergies, particularly hay fever and asthma, and that risk increases with the duration of stay in Australia.
Extreme weather events में इस प्रकार के एस्थमा का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रिपोर्ट के अनुसार विक्टोरिया राज्य में 2016 के थंडर स्ट्रॉम के दौरान करीब हर 5 में से 2 मरीज जो इमरजेंसी रूम में एस्थमा के सिम्टम्स के साथ मौजूद थे वे या तो ईस्ट एशिया से थे या भारतीय उपमहाद्वीप से। एक रिपोर्ट के अनुसार इसी वजह से उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने की संभावना भी 5 गुना बढ़ जाती है। भयावह आंकड़ा ये है कि इस डिजास्टर के कारण 2016 में जिन 10 लोगों की मृत्यु हुई उनमें से 6 पूर्वी या दक्षिण एशियाई मूल के थे। जानकार अभी ये नहीं बता पाए हैं कि ये लोग एलर्जीज के प्रभाव में जल्दी क्यों आते हैं, लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि एशियाई माता पिता के ऑस्ट्रेलिया में जन्मे बच्चे भी गैर एशियाई लोगों की तुलना में इन एलर्जीज की चपेट में ज्यादा आते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस या फिर एशिया में अलग तरह के पोलन और घास के संपर्क में रहना बड़ा कारण हो सकता है। अक्टूबर से दिसंबर तक विक्टोरिया में ग्रास पोलन का सीजन चलता है, इसीलिए राज्य की डिप्टी चीफ हेल्थ ऑफिसर एनजी बोन पूर्वी और साउथ एशियाई मूल के लोगों से तैयारी करने की अपील कर रही हैं।
People can take protective actions like making sure they've got their inhaler with them, staying indoors, should a thunderstorm occur, closing the windows to stop the pollen getting inside.
विक्टोरिया के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब तक ड्राई कंडीशंस के कारण थंडरस्टॉर्म एस्थमा के होने की संभावना कम ही है, लेकिन मेलबर्न स्थित भारतीय मूल के जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर सचिन दहिया बताते हैं कि यदि आप साउथ एशियन या भारतीय उपमहाद्वीप से आते हैं तो एस्थमा के सिम्टम्स को हल्के में ना लें। जी डॉक्टर दहिया, किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए?
जी, एक पहले हमें समझना पड़ेगा थंडरस्टॉर्म एस्थमा होता क्या है। ये बहुत ही कॉमन होता है महीने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जब थोड़ा पॉलन सीजन ज्यादा होता है। इसके रिस्क पे होते हैं एस्थमा, जिनको एस्थमा पहले कभी भी रहा है, चाहे वो चाइल्ड बचपन में रहा हो, जिसको चाइल्डहुड एस्थमा बोलते हैं, या एक्सरसाइज इंड्यूस, या जिनको हे फीवर की तकलीफ रहती है, वो ज्यादातर रिस्क पे रहते हैं। नाउ अभी हमें इसके बचाव के लिए क्या क्या करना है, हमें एक तो अपना जो अगर किसी को एस्थमा है उसको एस्थमा एक्शन प्लान अपना अपडेट कराना है जीपी के पास जाके, या किसी को पहले कभी भी एस्थमा रहा है उनको भी जाके अपने नए पफर्स के लिए, अभी पफर्स एक होता है रिलीवर और एक होता है प्रिवेंटर, तो वो अपडेट कराना है। अगर किसी को किसी भी तरह की वीजिंग हो रही है, या सांस लेने में कोई दिक्कत, या चेस्ट टाइटनेस, या कोई कॉफ काफी दिन से हो रही है, उन्हें शीघ्र ही जाके जीपी को दिखाना चाहिए। किसी को हे फीवर की अगर तकलीफ है तो उनको हे फीवर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वो पफर्स पे पहले से हैं तो उनको अपने पफर्स स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हवाएं काफी तेज चल रही हैं तो पोलन का रेट इंक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर आप एयर कंडीशनर चला रहे हैं तो उसको रीसर्कुलेट मोड पे कर दें। और अगर कोई इमरजेंसी है और अगर आप उसको नोटिस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप या तो ब्लू और ग्रे कलर का पफर लें, इसको चार पफ दें। अगर वो उससे आराम नहीं आ रहा है तो 4 मिनट के बाद वापस 4 पफ दें उसके, और ट्रिपल ओ को फोन करें। अगर ये आफ्टर आवर्स है तो आप या तो इमरजेंसी में जा सकते हैं या फिर आप होम डॉक्टर को बुला सकते हैं। दिन में आप अपने जीपी को दिखा सकते हैं, और अगर कोई और भी है तो आप विक्टोरियन गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी ऐप करी है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पोलन का रेट और सब की इंफॉर्मेशन रहेगी।
आपके विचार हमें बताए। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।